नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पटना में एनडीए के घटक दलों की होगी समन्वय बैठक। विधानसभा उपचुनाव और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य रूप से होगी चर्चा। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार से 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग की। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से देश भर में मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। और प्रदेश में डेंगू के मामलों के मिलने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 148 मरीजों की हुई पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पटना में एनडीए के घटक दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। समन्वय बैठक में राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़ उपचुनाव तथा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य रूप से चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इससे घटक दलों के बीच चुनाव संबंधी चर्चा की प्रक्रिया को गति मिलेगी। बैठक में भाजपा, जदयू, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे घटक दलों के नेता शामिल होंगे। बैठक में सभी पार्टी अध्यक्षों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों, विधान पार्षदों और जिलाध्यक्षों को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की तीसरे चरण की यात्रा कल बक्सर में संपन्न हुई। तीसरे चरण के दौरान श्री कुशवाहा ने जहानाबाद, कया, कैमूर और बक्सर का दौरा किया। उन्होंने कहा कि उनकी इस यात्रा का उद्देश्य एनडीए को मजबूत करना है। राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। उपचुनाव के लिए 4 सीटों पर 50 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरे हैं। प्रत्याशी 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 13 नवंबर को होगा। वहीं मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में प्राधिकरण ने राज्य सरकार से 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग की है। वायुयान संगठन निदेशालय के निदेशक डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने इस संबंध में दरभंगा के जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। पत्र में जिलाधिकारी को 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थाईलैंड के लिए सीधी विमान सेवा शुरू हो गई है। थाई एयर एशिया की विमानों का परिचालन सप्ताह में 3 दिन बुधवार, शुक्रवार और रविवार को होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम के तहत नवंबर महीने के तीसरे सप्ताह में दरभंगा आने का कार्यक्रम है। श्रीमती सीतारामन ऋण वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगी और ग्रामीण बैंकों के कार्यकलापों की समीक्षा करेंगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण बैंकों की एनपीए और कृषि ऋण वितरण पर मुख्य रूप से चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत रोजगार सृजन में कटौती किए जाने के दावों को खारिज किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि मनरेगा मांग आधारित योजना है, इसलिए इसके तहत नामांकन का लक्ष्य तय करना संभव नहीं है। दीपावली और छठ पर यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम और मध्य रेलवे की ओर से बिहार समेत पूर्वी भारत के लिए 56 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
इस दिवाली और छठ त्योहार के दौरान देश के पूर्वी हिस्से में यात्रा करने वाले यात्रियों की मांगों को पूरा करने के लिए ट्रेन सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता पश्चिम और मध्य रेलवे ने सुनिश्चित की है। इसमें नियमित ट्रेनों के अलावा कई त्योहार स्पेशल, जो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन्स हैं, वो भी चलाई जा रही हैं। मुंबई क्षेत्र से बिहार, यूपी और देश के पूर्वी क्षेत्र की ओर पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे की तरफ से टोटल 40 रेगुलर ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो कि 272 ट्रिप्स कंप्लीट करेंगी। इसके अलावा 16 हॉलिडे स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं जो टोटल 74 फेरे लगाएंगी।
इधर रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए कोटा से दानापुर, पटना से न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार से तौरम मधेपुरा और कटिहार से छपरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य के हर प्रखंड में वायु प्रदूषण का अगले 3 वर्ष तक अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि IIT कानपुर और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद संयुक्त रूप से यह अध्ययन करेगा। इस अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा नदी पर सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल के ढहने से क्षेत्र की जलीय जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की आशंका के संबंध में केस दर्ज किया है। अगले वर्ष 6 जनवरी को ट्रिब्यूनल के पूर्वी जोन बेंच कोलकाता में इस पर सुनवाई होगी। याचिका में पुल ढहने के चलते विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण का पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से देश भर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
यह सप्ताह शासन और सार्वजनिक प्रशासन में नैतिकता और पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में अधिक संवेदनशीलता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस सप्ताह का विषय है राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति। सप्ताह का आरंभ मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और अन्य संगठनों में लोक सेवकों की ओर से संकल्प लेने के साथ होगा। सप्ताह के दौरान भ्रष्ट आचरण के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए कई समारोह आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन वाले सप्ताह में किया जाता है। सुमित और दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से डेविड शर्मा।
इधर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर अपने संदेश में लोगों से अपने आचरण में ईमानदारी की मिसाल कायम करने की अपील की है। चक्रवाती तूफान दाना का प्रभाव प्रदेश के विभिन्न भागों में अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 2 दिनों तक प्रदेश के मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।
दक्षिण बिहार में अगले 48 घंटों तक घने बादल रहेंगे। उत्तरी बिहार में भी बादल रहेंगे लेकिन दक्षिण बिहार के बनिस्पत बादल हल्के प्रवृत्ति के रहेंगे, अर्थात उत्तरी बिहार में बूंदाबांदी एवं दक्षिण बिहार में हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। ज्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। हवा की गति समान, अधिकतम तापमान 31 से 33 एवं रात्रि तापमान 22 से 24 के बीच रहने की संभावना है।
प्रदेश में डेंगू के मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर से डेंगू के 148 मरीज मिले हैं। इसमें सबसे अधिक 68 मामले पटना से हैं। वहीं सिवान से 10 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इधर पटना से चिकनगुनिया के भी 9 नए मामलों की पुष्टि हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से संबद्ध सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को अपने नाम के आगे PM-श्री लगाना होगा। बोर्ड ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। CBSE अपने सरस पोर्टल के माध्यम से इसके लिए सभी विद्यालयों से ऑनलाइन आवेदन मांगेगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी गौरव यात्रा कल सुपौल, मधेपुरा और सहरसा पहुंची। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय विद्यालय के छात्र छात्राओं ने ट्रॉफी का स्वागत किया। बक्सर जिले के सिमरी थाने की हाजत में बंद युवक राजेश कुमार खरवाल की मौत के मामले में थानाध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के पताही रूप के पुरौनी के पास पुलिस ने एक ट्रक से 50 लाख रुपए मूल्य की शराब बरामद की है। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत कोरजाना गांव के पास पुलिस ने एक वाहन से 50 किलो गांजा के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं अररिया जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पलासी से टीआईयू की टीम ने एक ट्रक से 5,662 लीटर शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया। वैशाली जिले के पिदुपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने मादक पदार्थ स्मैक के साथ मिजोरम के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 13 लाख रुपए भी बरामद किए गए। बक्सर जिले के इटाढ़ी से पुलिस ने साइबर अपराध गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में एक्सिस बैंक धनबाद का शाखा प्रबंधक भी शामिल है। गया जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के तरवा बाजार से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने हथियार तस्कर सत्येंद्र चौधरी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 3 हथियार बरामद किए गए। पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कुख्यात मानिक और पांडव गिरोह के 3 सदस्यों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। वाराणसी के सर्व सेवा संघ के ध्वस्त किए गए भवन के पुनर्निर्माण और मुआवजे की मांग को लेकर बिहार लोक समिति की ओर से पटना में 1 दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को प्रमुखता देते हुए लिखा है, डिजिटल अरेस्ट फरेब है, सख्ती से निपटेंगे। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, छठ घाट पहुंचने वाले रास्ते दुरुस्त कराएं। प्रभात खबर ने लिखा है, जमीन सर्वे स्वघोषणा का नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन आवेदन सर्वर 2 दिन से ठप। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बांद्रा टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर दिवाली छठ की भीड़, ट्रेन में चढ़ने के लिए मची भगदड़, 9 घायल। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, शहाबुद्दीन की पत्नी और बेटा राजद में शामिल। आज अखबार की सुर्खी है, शिक्षकों की पहले पोस्टिंग फिर सत्यापन। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज पटना में एनडीए के घटक दलों की होगी समन्वय बैठक। विधानसभा उपचुनाव और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य रूप से होगी चर्चा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दरभंगा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। राज्य सरकार से 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग की। सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आज से देश भर में मनाया जा रहा है सतर्कता जागरूकता सप्ताह। और प्रदेश में डेंगू के मामलों के मिलने का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटों के दौरान 148 मरीजों की हुई पुष्टि। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।